शांति, मधुबन आबू अब्बा की धरनी में आप सभी भाई बहनों का, जो खास सहारनपुर से और मोगा के कनेक्शन से भट्टी करने आए हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। और इसके साथ साथ हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। दीदी का भी हम एक हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हंसवाहिनी वीणा वादिनी, विद्या की देवी सरस्वती आपके जीवा पर सदा विराजमान है, आप हर की पौड़ी है। ऐसे वरदान से स्वयं भगवान ने जिन्हें सजाया है, वो प्रतिभावान हस्ती आज हमारे बीच में है। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपका ये सौभाग्य रहा कि स्वयं ब्रह्मा बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ और उसके बाद अलौकिक पढ़ाई में लग गए। लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बड़े हुए, मुंबई यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया और एग्जाम्स देकर 1969 में अप्रैल मई के मास में आप मधुबन आए और आकर के टीचर्स की सर्वप्रथम ट्रेनिंग जो रही उसमें पार्टिसिपेट किया और राजयोगा टीचर के रूप में आप तैयार हुए। बाबा ने आपको देश और विदेश की धरनी पर सेवार्थ भेजा, राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर आप गए और बाबा का नाम बाला किया, बाबा के सेवा केंद्र खोले, बच्चे तैयार किए। और फिर 76 में जब आप मधुबन में आए तो एक सुनहरा अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा था और वो सुनहरा अवसर था दादी जी ने आपको ऑफर किया मधुबन निवासी बनने का और आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से आज दिन तक आप इस पांडव भवन की धरनी पर रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके विश्व भर में बाबा का नाम चमकाया है। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और मधुबन पांडव भवन में पूरे वर्ष भर में या तो भट्टियों के प्रोग्राम होते हैं भारत के भाई बहनों के लिए या फिर विदेशी सीजन में विदेश के भाई बहनों के प्रोग्राम होते हैं। तो साल भर जो भाई बहनों के ज्ञान योग के प्रोग्राम चलते हैं उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और मुख्य रूप से वर्तमान में हम जब देख रहे हैं कि दादियां सभी हमारी अव्यक्त होती चली गई हैं, तो मम्मा बाबा और दादियों से जो पालना ली है और उन पालना के अनुसार जो जीवन को गढ़ा है उसी आधार से अब आप वही पालना सबको देते रहते हैं और दादियों की भावना से भरपूर करते हैं। तो ऐसी हमारी दीदी दादी सम आज हमारे बीच में बहुत सुंदर विका प्रश्न विषय पर प्रकाश डालेंगे। यूं तो हमारी भट्टी का थीम है महसूसता द्वारा संपूर्णता, लेकिन बहुत बड़ा थीम है और इसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो एक छोटा लक्ष्य हमारा है जीते जी मरने का। तो जीते जी मरने की विधि क्या है इस पर प्रकाश डालते हुए दीदी भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को आप सबके सामने स्पष्ट करेंगे। तो हम सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी। हाँ, आप सभी का परिचय देंगे दीदी को हम। तो जो सहारनपुर कनेक्शन से भाई बहने आए हैं जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, बड़ा ग्रुप तो आपका ही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भाई बहने मोगा के कनेक्शन से आए हैं, हाँ, आपका भी इस मधुबन धरनी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भाई बहने ज्ञान में चलते 1 से 5 वर्ष हुए हैं, ऐसे भाई बहने हाथ खड़ा करें। 1 से 5 वर्ष वाले बच्चे, आप सभी का स्वागत है। 5 से 10 साल वाले बच्चे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 10 से 15 वर्ष वाले बच्चे, बहुत वेलकम आपका भी। 15 से 20 वर्ष वाले बच्चे, सभी में हाथ उठ रहे हैं, सबका वेलकम है। और 20 से ऊपर वाले बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारी खास राजयोगा टीचर्स बहने हैं, वे जरा हाथ उठाए। कितनी टीचर्स बहने आई है हमारी राजयोगा, आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। सहारनपुर कनेक्शन और मोगा कनेक्शन को छोड़कर अगर किसी को लॉटरी लगी है, वे भी हाथ खड़ा करें। कहाँ से हैं आप लोग? हैदराबाद, मुंबई और कर्नाटक, और इधर से आवाज आ रही, फरीदाबाद। हाँ, तो लगभग पूरे ही भारत भर से कोई ना कोई पधारे हैं। तो जो भी पधारे हैं बाबा के इस आबू अब्बा की धरनी में भट्टी के लिए, सभी का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और अभी हम सुनते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखला दिया है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ओम शांति के मंत्र में सब कुछ आ जाता है, सारा ज्ञान आ जाता है, सारी पढ़ाई आ जाती है, सारा योग आ जाता है। तो इसलिए फिर से ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि, जितनी महिमा करे उतनी कम, ऐसी भूमि में आप सभी भट्टी करने आए हैं। तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व वरिष्ठ भाई बहने और सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से और मेरे तरफ से भी फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ताली बजा सकते हैं। मधुबन में भट्टी करना ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। 2 दिन पहले यहाँ इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। बिजली खत चली गई थी, या अभी भी बिजली पता नहीं आई है या नहीं, जनरेटर पर सब चल रहा है। नेट इंटरनेट नहीं, टेलीफोन नहीं, जैसे कि सारी दुनिया से हम सब कट ऑफ थे। इतने झाड़ गिरे हुए गिरे रोड पर, देखे आप लोगों ने आते समय, देखे ना, सारी तारे जो भी थी वो सब अस्त व्यस्त हो गए। यहाँ भी हुई है, मानो ऐसे लगा कि हम माउंट आबू में सारी दुनिया से अलग हो गए। बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई संपर्क नहीं। बसे भी आप लोग कैसे आए, बसे मिली या छोटी गाड़ियों में आए? छोटी गाड़ियों में, क्योंकि झाड़ियाँ गिरी पड़ी है, पेड़ गिरे पड़े हैं, तारे चारों ओर है, तो इसलिए छोटी गाड़ियों में ही ऊपर ला रहे हैं। तो यहाँ से तो रिक्वेस्ट गई थी, बारिश इतनी पड़ी, सब बिस्तरे गीले, कमरे गीले, सब कुछ, पूरे 4-5 दिन ये चला। पिछला ग्रुप जो आया था उनों को तो उनके तो कपड़े नहीं सूखे, फिर भी उनों को शुरू में तो अच्छा लगा, मौसम ठंडा था, मुंबई से आए थे, बहुत गर्मी थी वहाँ। पंजाब में क्या हाल है, गर्मी है कि ठीक है मौसम? गर्मी है वहाँ, वहाँ गर्मी है, यहाँ आए तो ठंडक की राहत मिली ना, मिली कि नहीं? हाँ, तो शुरू में तो उनको अच्छा लगा, बारिश तो थोड़ी पड़ी, लेकिन उसके बाद तो माउंट आबू की बारिश, जैसे अगस्त में यहाँ बारिश पड़ती है तो उस समय कहते हैं अगस्त इज डिसगस्ट, डिसगस्ट, इतने परेशान हो जाते, कुछ कपड़े नहीं सूखते, सब गीला 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 रहता है यहाँ। तो यहाँ भी ऐसे ही 2 दिन में खेल कर दिया, और सौराष्ट्र से वो तूफान आया और राजस्थान में आ गया, और राजस्थान में तो चलो माउंट आबू तो पहाड़ है, यहाँ पानी तो ठहरता नहीं है, लेकिन यहाँ का सारा पानी बनास नदी में गया, और वहाँ के अभी पूरा बांध भर गया, सब भर गए, नक्की लेक भर गया, झरने देखे, कुछ झरने मिले आपको? थोड़े झरने मिले, तो यहाँ भी झरने बहने लगे, तो बिल्कुल अगस्त का महीने जैसा अनुभव हुआ। तो कईयों को तो बहुत अच्छा लगा, ठंडी ठंडी हवाएं मिली, और मुंबई से आए थे तो गर्म कपड़े भी नहीं लाए थे, तो यहाँ तो ठंडी लगी उनको क्योंकि गर्म कपड़े तो लाए नहीं थे, और हवाएं ठंडी ठंडी चली, आखिर पहाड़ है तो पहाड़ों का तो मौसम ही अलग होता है। खैर, फिर तो आखिरी दिन उनको थोड़ी राहत की सांस मिली, परंतु फिर तो गाड़ियाँ भी, बड़ी बसें तो बंद हो गई, सब छोटी गाड़ियों में गए। फिर हमने कहा भाई इनको कहो इनको परेशानी ना हो तो नीचे करे, तुम्हारी बहनों ने कहा नहीं 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 ये तो ऊपर ही करेंगे कुछ भी हो जाए ऊपर ही करेंगे, पिछले साल भी शायद ऐसे समय पर आप आए होंगे, पिछले साल भी आए थे, आपको रोका गया था ऊपर आने में, तो आप लोगों ने फिर नीचे किया, लेकिन सब ने कहा नहीं तो कुछ भी हो जाए हम तो ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। कहा ठीक है तो आपकी रिक्वेस्ट मानी गई, परंतु अभी तो मौसम अच्छा हो गया। फिर कहा कि बसें तो मिलेगी नहीं, तो कहा कोई बात नहीं, परंतु अभी ठीक है, कमरे ठीक है, गीले तो नहीं है, बिस्तरे ठीक है, सब ठीक है, सीट ठीक हो गया ना, क्योंकि अभी कल परसों से बारिश थमी है, परसों तक तो बहुत आंधी तूफान था और बार बार बिजली जाती रहती थी, अंधेरा ही था चारों ओर। खैर, तो आप सबको यह पट्टा मिल गया, स्टैंप मिल गई कि महसूसता द्वारा संपन्नता और संपूर्णता की योग बढ़ी, क्योंकि समय को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, दुनिया की जो भी हालतें देखते हुए लगता है ना कि समय कितना होगा बाकी, परिवर्तन तो होना ही है, और बाबा ने तो कब से कह दिया है, कितने सालों से, शुरू से ही कहते आए बाबा, यहाँ तक भी कहते रहे अगली दिवाली नहीं आएगी, फिर भी 86 दिवालियाँ तो चली गई, 86 साल हो गए, लेकिन अभी महसूस हो रहा है कि समय बहुत नज़दीक है, और बाबा का कार्य भी दिन प्रतिदिन बहुत वृद्धि को पा रहा है। जब बाबा की मुरली चलती थी कि बच्चे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लग जाएगी, सारा माउंट आबू आपका हो जाएगा, बहुत कुछ भविष्यवाणियां बाबा करते थे, तो उस समय बच्चे सोचते थे बाबा कह तो रहे हैं, पता नहीं यहाँ पता नहीं, तो कुछ एक क्वेश्चन मार्क था। और अभी हम देखते हैं कि लोग पहले उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा ब्रह्मा कुमारियों को मकान ही नहीं देना, नहीं देना उनको, ये घर बार पिटाती है, ये भाई बहन बनाती है, न जाने क्या क्या कहते थे, गलत फहमियाँ भी बहुत थी। लेकिन अभी बाबा कहते आखिर वो समय आएगा जो अपने आप आपको मकान देंगे, अपने आप आपको जमीन देंगे, आपको कहेंगे अभी सेवा करो यहाँ, और आप कहेंगे नहीं नहीं बस बस अभी हमको और नहीं चाहिए हा? तो वो समय था जब देने को तैयार नहीं थी, और अभी हम कहते हम लेने को तैयार नहीं है हा? ऐसे हो गया। और जब नीचे से गाड़ियाँ आती है तो पूरा जैसे माउंट आबू से आबू रोड तक अपने ही बाबा के बच्चे होते हैं, ऐसे भी होता है। वो भी देख रहे हैं मकान लेते जा रहे हैं, यहाँ भी कितने आके बीके अबू निवासी बन गए हैं, चारों ओर बाबा के बच्चों के घर हैं। तो हम देखते हैं कि जो बाबा ने उस समय कहा वो उस समय तो लगता था एक स्वप्न है, परंतु वो साकार कैसे होता गया वो भी हम देख रहे हैं। शुरू में बाबा ने कहा कि हम सब बस तपस्या करेंगे और परिवर्तन हो जाएगा और हम सब साथ में वापस जाएंगे। तो यही सबको लगा सब यही तपस्या करेंगे और सब साथ में वापस जाएंगे, तो कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, सब यहीं के यहीं होंगे और सब एक साथ वापस जाएंगे। अब पता तो कुछ था नहीं, लेकिन बाबा ज़रूर कहते थे कि सब साथ में जाएंगे, पर इतनी सेवाएं होगी और एक एक दादी हमको छोड़ के जाएगी, अव्यक्त वतनवासी बनेगी, एडवांस पार्टी बनेगी, सत्यु की तैयारी गुप्त रूप से होगी, ये सब तो शुरू में कुछ पता नहीं था। तो सबसे पहले तो मम्मा ने देह त्याग किया 1964, और ये जून का महीना मम्मा का महीना कहते हैं, सब तरफ मम्मा की लहर है। और आज तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और बाबा ने यहाँ तक भी कहा था कि तुम्हारा हाँ डंका सारे विश्व में बजेगा, तो वो भी हम देख रहे हैं। योग के नाम पर सारे विश्व में योग चल रहा है, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशंस में हैं, और वहाँ पर वो इंटरनेशनल योगा का प्रोग्राम यूएन में चल रहा है, और उनको मोदी जी लीड कर रहे हैं वहाँ, और 190 देशों के जो प्रतिनिधि है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो इसमें भाग ले रहे हैं, और मोदी जी सबसे आगे सबको योगासन सिखा रहे हैं। तो वो तो समझते ना, तन का मन का आत्मा का तीनों का समन्वय हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन राजयोग को तो कोई जानता नहीं है। और बाबा ने तो हम बच्चों को राजयोग सिखाया है जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं, वो तो समझते केवल स्वास्थ्य मिलेगा वो भी अच्छा है, तो तन को तो तंदुरुस्त करते ही है, लेकिन मन को शक्तिशाली बनाने के लिए तो ये ज्ञान और योग ही काम आएगा। तो बाबा ने कहा वो तो तन के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, लेकिन आपको ये आध्यात्मिक रूप से सबको सहज राज योग सिखाना है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन करना है, यही है वास्तव में सच्चा योग, यही है ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग, सहज योग, संन्यास योग, समत्व योग, सब प्रकार का जो योग गीता में वर्णित है वो भगवान हमको राजयोग के रूप में सिखाते हैं। तो हम सभी राजयोगी हैं, कल भी बाबा ने कहा राजयोगी हो, राज ऋषि हो, फिर बाबा ने क्या कहा कल, तुम सब जीते जी मरे हुए हो। हाँ है, सब जीते जी मरे हुए, कल की मुरली सुनी ना आपने, जिन्होंने कल की मुरली सुनी वो हाथ उठाए, अच्छा सबने सुनी, वो सुन करके ही आए होंगे ना, कल निकले होंगे, आज ही पहुंचे। तो बाबा ने कहा कि सब जीते जी मरे हो, तो आप लोग क्या समझते हो, सब जीते जी मर चुके हो या अभी तक मरना है, हाँ? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जो समझते जीते जी मर चुके हैं दुनिया से वो हाथ उठाए। अच्छा साफ नहीं उठा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हिचक रहे हैं, कोई तो उठा लिया लेकिन कोई थोड़ा हिचक रहे हैं। माताओं ने तो उठा लिया, भाई थोड़ा हिचक रहे हैं। खैर देखो, भक्ति मार्ग में हमने महाकाल को बुलाया। महाकाल, महाकाल क्या आकर करेगा अगर महाकाल को बुलाते हैं, है ना? महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में, तो महाकाल की पूजा करना। तो महाकाल अगर आएगा इस सृष्टि पर तो क्या करेगा, क्या करेगा? हाँ, सबको घर ले जाएगा, काल से मुक्त करेगा, वापस परमधाम ले जाएगा। तो जब से शिव बाबा आए तब से बाबा ने यही कहा, दे से दे के सब धर्मों को भूलो, मेरी शरण में आओ। गीता के तो ये मुख्य महावाक्य है, सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो सभी दे और दे के धर्मों को त्यागो। तो बाबा ने दे के धर्मों को तो त्याग करा ही दिया, आत्मा का ज्ञान देकर, परमात्मा का ज्ञान देकर, अपने साथ योग लगवाकर, ये सब हद की बातों से बाबा ने छुड़ा दिया। अभी ये हम नहीं कहेंगे मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, सब आत्माएं हैं, सब भाई भाई है। हाँ ये पंजाबी है, ये हिंदी है, ये गुजराती है, मराठी, ये भी नहीं। उस समय सिंध में तो बहनें जो थी वो तो सिंधी बोलती थी, और जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा ने तो हिंदी में बोलना शुरू किया। तो बाबा ने सबको कहा भी कोई भी सिंधी में बोलेगा नहीं, सबको हिंदी में ही बात करनी है। बाबा की मुरली हिंदी में चलती थी शुरू से, तो बहनों को तो सिंधी टोन, सिंधी एक्सेंट वो तो था ही, लेकिन कैसे धीरे 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 बाबा ने सबसे सिंधी भी भुला दी और फिर बस हिंदी। अभी तो ऐसे हमारी दादियाँ थी, दादियों को कहते थे दादी इनसे सिंधी में बात करो, तो दादी भूल जाती थी। हाँ आपकी सहारनपुर की भगवती दादी थी ना, तो वो सिंधी में बोलती थी या हिंदी में बोलती थी? हाँ सिंधी भूल गई थी या बोलती थी? बोल नहीं, भूल गई थी ना, कई भूल गए थे। तो वो सिंधी में शुरू करते थे फिर हिंदी आ जाती थी, क्योंकि बाबा ने किसी को भी सिंधी में बात करने लिए नहीं दिया। उस समय तो फेमस था सिंधी पापड़ खाते हैं, तो बाबा कहते थे अगर सिंधी में बात किया तो पापड़ बंद। हाँ पापड़ बंद, ऐसे जोक से हंसी मजाक में कहते थे। तो देखो बाबा ने ये सब हदें हमारी पार कर दी। फिर बाबा यहाँ तक कहते रहे, बच्चे अभी घर चलना है तो सब कुछ भूलो, अशरीरी बन जाओ। पहले बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, फिर बाबा ने कहा विदेही बनो, फिर कहा अशरीरी बनो। तो कई हमसे पूछते हैं तीनों में अंतर क्या है, देही अभिमानी बनना, विदेही बनना, अशरीरी बनना, तीनों तो एक ही बात है लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर है। पहले देही अभिमानी बनते हैं, इसको आत्मा अभिमानी कहें, कि वो बाबा ने हम बच्चों में कूट कूट के भरा, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। बाप ब्रह्मा बाबा खुद भी इसी में ही रमण करते रहे। बाबा का भी अपनी पत्नी में, बहू में, बच्चों में मोह तो था ना, गृहस्थी तो थे, बिजनेसमैन थे, तो बाबा ने कैसे उनका सब कुछ खत्म किया। हाँ मोह खत्म किया। बाबा उनको कहते थे यशोदा को आत्मा देखो, तो राधिका बाबा की बहू थी, बहुत मोह था बाबा का मोह, राधिका भी जो ब्रिजेंद्रा दादी, तो बहुत मोह था। कैसे बिजनेस में राजाओं महाराजाओं के पास उनको ले जाते थे, बहुत सुंदर भी थी और गहने बेचते थे तो उनको पहना करके ले जाते थे, तो बहुत मोह था। और दादी ब्रिज इंद्रा का भी उनमें बहुत मोह था, उनका नाम राधिका था। तो बाबा ने सबसे पहले यही अभ्यास किया, यशोदा बाबा की लौकिक युगल यशोदा आत्माएं, यशोदा आत्माएं, ताकि यशोदा ये नहीं समझे कि ये मेरा पति है। हाँ, बाबा की दृष्टि तो बदल गई लेकिन यशोदा की दृष्टि भी बदले ना, ये मेरा पिता है। हाँ, पति पिता बन गया। तो देखो, तो बहू है वो बेटी बन गई, तो कितना फर्क पड़ गया ना, सब कुछ बदल गया। तो यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, क्योंकि राधिका बहू का भी बहुत मोह था बाबा ने, तो आत्मा है, आत्मा है। बाबा दीवारों पर लिखते थे ताकि यशोदा और राधिका वो पढ़े और उनको भी बुद्धि में आए कि आत्मा हूँ, ये आत्मा हूँ। हाँ, बाबा को भी आत्मा देखना है, तो बाबा भी वही दृष्टि रखते थे, इनको आत्मा देखना है। तो आत्मा अभिमानी बनना, देही अभिमानी बनना, ये सबसे पहला कदम है राजयोग में। सबसे पहला यही कदम है कि हर एक को आत्मा देखो, खुद को भी आत्मा समझो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, और सबके प्रति वही दृष्टि रखो, ये सब आत्मा है। हर कर्म करते हुए वो आत्मा अभिमानी स्थिति हो, तो हर कर्म करते वो आत्मा अभिमानी स्थिति रहना, ये देही अभिमानी स्थिति है। उसमें कर्म को नहीं छोड़ते हैं, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना, ये देही अभिमानी स्थिति है। तो सबसे पहला अभ्यास बाबा ने यही सिखाया, तुम आत्मा हो। एक दो को देखते थे, आत्मा को देखते थे, या सितारा चमकता है हर एक की भ्रकुटी पर। तो ये अभ्यास बाबा ने बहुत कराया, दृष्टि बाबा देते थे और एक दो को भी दृष्टि देते थे तो बस आत्माभिमानी, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। फिर बाबा ने दूसरा शब्द कहा, विदेही बनो, विदेही बनो, विदेही बनो। राजा जनक मिसल विदेही बनो, राजा जनक को विदेही राजा कहते थे, विदेही राजा। विदेही राजा माना घर गृहस्थ में रहते हुए किसी से भी लगाव नहीं। इतने बड़े राजमहल में रहता था, कोई सन्यासी नहीं बन गया, इतने सारे इतने बड़े महल में रहता था, सारा उनका पूरा राज्य चलाता था, लेकिन किसी भी बात में उसका मोह नहीं था। कितनी कहानियां उस पर आती है कि एक सन्यासी भी उनके पास गया और कहा कि आप विदेह राजा कहलाते हो, आप इसकी इसका सीक्रेट क्या है, इसकी युक्ति क्या है, कैसे आप विदेह राजा कहलाते हो। तो उसने उसको एक दीपक दिया और कहा कि ये दीपक लो और मेरे महल का अवलोकन करके आओ। तो जैसे दीपक लिया, लेकिन कहा कि दीपक बुझे नहीं, कितनी भी हवा आए, झोंके आए, हाँ, आप ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब वो तो गया, सन्यासी गया, लेकिन सब तरफ तो देख ही नहीं सका क्योंकि ध्यान तो दीपक पर था। तो जब वापस आया तो यही कहा, राजा ने पूछा आपने देखा महल, तो कहा कि महल क्या देखता, पूरा ध्यान तो दीपक पर ही था। तो देखते हुए भी जैसे नहीं देखा क्योंकि दीपक पर ध्यान था कि बुझे नहीं। तो कहा बस यही विदेही राजा की स्थिति है, सब कुछ करो, कुछ भी छोड़ना नहीं है पर कहीं भी फंसना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कहीं भी फंसना नहीं है, निभाना भी है। हाँ, चक्कर तो लगाया ना, आज्ञा का पालन तो किया, तो निभाना भी है, लेकिन आसक्ति रहित सब कुछ निभाना है। तो इसीलिए इसी को कहेंगे विदेही स्थिति। नौकरी करो, धंधा करो, बाल बच्चे संभालो, पूरी गृहस्थी आपकी जो भी है सब संभालो, लेकिन कमल फूल समान जीवन, कमल फूल समान जीवन, यही है विदेही स्थिति। कीचड़ में भी रहते हैं लेकिन कीचड़ से अलिप्त। अष्टावकर ने उसको ज्ञान दिया। हाँ, उसने कहा मुझे एक सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाए, वो विदेही स्थिति एक सेकंड में हो जाए। तो एक सेकंड में कैसे हो जाए, सब उनके सारे दरबारी थे, बड़े विद्वान थे, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिले वो कोई भी नहीं बता सका। तो वो सोचा कि बस अभी तो कोई नहीं बता सकेगा। तो उसी समय अष्टावकर पहुंच गया। वो घोड़े पर चढ़ रहा था राजा, तो एक पैर उसका घोड़े पर था, सैडल पर जहाँ पांव रखते हैं, और दूसरा धरती पर था। और उसी वक्त अष्टावकर ने उनको रोका और कहा कि अभी आप कहाँ हो, कहाँ पर हो? तो उसने कहा कि घोड़े पर हूँ, परंतु घोड़े पर तो एक ही पांव है, एक पांव तो धरती पर है। तो कहा धरती पर हूँ, तो कहा एक पांव तो घोड़े पर है। तो घोड़े पर हो या धरती पर हो, तो वास्तव में क्या कहेंगे, न घोड़े पर था न धरती पर था, क्योंकि एक पैर घोड़े पर एक पैर धरती पर। तो इसीलिए दोनों पर हूँ। ये बंदर है, बंदर भी सुनने आए, इसलिए बंदरों की आवाज है। तो धरती पर एक पैर और घोड़े पर दूसरा पैर, तो धरती पर भी हूँ और घोड़े पर भी हूँ, दोनों पर हूँ और दोनों पर नहीं हूँ, बस का यही जीवन मुक्ति है। जीवन में है, शरीर में है आत्मा, सब कुछ कर्म कर रही है, लेकिन फिर भी सब बंधनों से मुक्त है। तो सब बंधनों से मुक्त माना जीवन मुक्त, दुखों से मुक्त, रोगों से मुक्त, शोक से मुक्त, उसकी पीड़ा से मुक्त, सब बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोग नहीं आएंगे, वो तो आएंगे, अपना हिसाब किताब तो अंतिम जन्म है, चुकतू तो करेंगे, लेकिन उसमें आसक्त नहीं। मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे ये बीमारी है, मुझे बीमारी है, ये वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर को बताने का, बाकी सबको बताने की क्या जरूरत है, चेहरा तो हर्षित ही हो। दादियों को हम देखते थे, चाहे कितनी भी बीमारी थी तो भी कभी वर्णन नहीं करते थे, चेहरे से दिखाई भी नहीं देता था। एक बार किसी ने दादी जानकी से पूछा, दादी आपको कोई तकलीफ है, दादी आपको दर्द है? दादी ने कहा, क्यों दिखाई देता है क्या आप चेहरे से? इतना दर्द होते हुए भी कैसे, वो अशरीरी हो जाती थी, न्यारी हो जाती थी। गुलजार दादी तो डॉक्टरों को भी नहीं बता पाती थी, जब डॉक्टर कहते थे दादी आपको दर्द है, कहती नहीं नहीं, मैंने पता नहीं होगा कितना होगा, शरीर को रोग तो थे ही, लेकिन उनको कोई फीलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं, ऐसी अशरीरी हो जाती थी। मानो विदेही तो थी ही, किसी में भी आसक्ति नहीं थी, एक सेकंड में न्यारी हो जाती थी, लेकिन अशरीरी भी थी, क्योंकि विदेही स्थिति से ऊपर है अशरीरी। अशरीरी स्थिति माना देह भान से बिल्कुल परे, क्योंकि एक होता है अहंकार, देह का अहंकार, फिर दूसरा होता है देह का अभिमान, और तीसरा होता है देह का भान। तो वो तो जैसे दादी देह के भान से भी परे ही थी। चलो हम कहेंगे नहीं मैं आत्माभिमानी हूं, लेकिन थोड़ा हिलते जुलते तो है ना, कभी कभी योग में बैठते हैं तो भी, लेकिन दादी तो हिलती भी नहीं थी। आप देखते ना बाप दादा जब आते थे कैसे बाबा स्थिर बैठते थे, बिल्कुल स्थिर एकदम, जैसे है या नहीं है, केवल आवाज निकलती थी। तो ये अशरीरी स्थिति वो अनुभव करनी है। तो अभी तो बाबा हमें यही कहते हैं अशरीरी बनो। तो अशरीरी बनना माना जीते जी मरना, विदेही बनना माना जीते जी मरना। तीनों स्थिति जीते जी मरने की स्थिति है, शरीर में है और शरीर में नहीं है, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो आत्मा तो निकल जाती है ना। एक सेकंड लगता है आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश होती है, और प्रवेश हुई तो पिछले जन्म का सब भूल जाता है। तो जीते जी मरना माना पास्ट को बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना। न केवल मेरा 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 ये भूलना नहीं, लेकिन पूरा पास्ट भूल जाना, भूतकाल सारा भूल जाना। अब किसने मेरे को धोखा दिया 10 साल पहले 20 साल पहले, कुछ अपशब्द बोले, मनुष्य तो वो 20 साल तक भी याद करते रहते हैं, इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ऐसे डांटा था, ऐसे गाली दी थी। तो बाबा कहते वो बात तो छोड़ो, लेकिन पिछले मिनट क्या हुआ वही भूल जाना। जरूरत की बात याद करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत की बात जो नहीं है उसको क्यों याद करें। लेकिन हम छोटी बात को इतना बड़ा कर देते हैं, अच्छी बात होगी तो भी बड़ा कर देंगे, बुरी बात होगी तो भी बड़ा कर देंगे। और दादियां तो बिल्कुल सोचती भी नहीं थी, हुआ पूरा हुआ खत्म। हाँ, मैं तो एक मिसाल जरूर देती हूँ दादी जानकी का। दादी जानकी यूनाइटेड नेशंस में गई थी, वहां पर भाषण था दादी का, 3 मिनट का था यूएन में। तो दादी ने इंग्लिश में पढ़ के सुनाया था, तो इंग्लिश में फटाफट पढ़ लिया, नहीं तो दादी कहती थी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। तीन क्लास केवल पढ़ी थी दादी, बस खाली अक्षर ज्ञान आ गया था, और फिर तो शास्त्र पढ़ने लगी, स्कूल ही छोड़ दिया था। लेकिन जब बाबा ने दादी को लंदन भेजा तो दादी ने कहा, बाबा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, आपको इंटरप्रेटर बहुत मिल जाएंगे, अनुवाद करने वाले, आपको तो हिंदी में ही बोलना है। लेकिन कैसे वो इंटरप्रेटर इंग्लिश में जो सुनाते थे वो सुनते 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 दादी को भी इंग्लिश समझ में आ गई, ना होता है ना। और फिर कैसे वो इंग्लिश अक्षर तो पता ही थे ना, अल्फाबेट्स तो सीखी थी, अक्षर ज्ञान तो था ही। तो इसीलिए दादी ने वो पढ़ के सुनाया, 3 मिनट का भाषण, इतना जबरदस्त रूप से सुनाया, हाँ बेधड़क होकर के सुनाया, निर्भय होकर के, इतने बड़े बड़े VIPs बैठे थे उनके आगे सुनाया, इतनी तालियां बजी, इतनी बूढ़ी औरत और ऐसे सुना रही है। हम लोग तो फिर भी सोचे कि भाई कैसे सुनाएं, लेकिन दादी जी ने बस बाबा की मदद मिली। तो जब दादी जी वो सब करके मधुबन आई थी, तो हमने दादी से ऐसे प्रश्न किया, दादी वो अनुभव तो थोड़ा सुनाओ ना UN का। तो दादी ने कहा, कौन सा? मैंने कहा, दादी आपने UN में भाषण किया। कहती, मैं तो भूल भी गई मैं तो भूल भी गई, मानो कि वो तो जैसे बात पूरी हो गई तो गई, रात गई बात गई। दादी ऐसे ही कहती थी, रात गई बात गई, उसको क्या याद करना, अभी तो आगे देखना, आगे चलना है, पीछे को नहीं देखना है। ये दादी जी की, दादियों की विशेषता थी। और ऐसी भी स्थिति आ गई जो दादियां कुछ भी नहीं याद करती, बस जो दादी के सामने जाए बस दृष्टि देती थी। यही हम दादियों को देखते थे। और सचमुच हम भी दादियों को जब देखते थे तो हमारे अंदर में आता था, मैं दादी से ये बात कहूँ, ये कहूँ, ये कहूँ। लेकिन जैसे दादियों के सामने जाते थे न, सब भूल जाते थे, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती थी, और उनके उनकी स्थिति के आगे हम जो उनको सुनाएंगे वो तो कितनी साधारण बात होगी। तो इसीलिए वो इतनी ऊंची स्थिति के आगे वो साधारण बात करना बड़ा अजीब लगता था। तो हम भी भूल जाते थे कि दादी को ये क्या छोटी छोटी बातें सुनाई, दादी की स्थिति तो कितनी ऊंची है। तो इतनी ऊंची स्थिति दादियों की देखते थे, तो सचमुच जो कर्मातीत बाबा कहते हैं, संपन्न संपूर्ण, वो स्थिति हम अनुभव दादियों की करते थे। लगता था कि बस सभी हाँ, और ये बस समाप्ति का समय है बस। तो दादियों से तो बहुत ही प्रेरणा ली, इतने साल दादियों के साथ यहाँ मधुबन में भी रहना हुआ, बाबा मम्मा को भी देखा, मम्मा को भी हम देखते थे, छोटे थे हम, मम्मा क्लास कराती थी, हम बैठते थे, मम्मा की मुरली सुनते थे, मधुबन आते थे, मुंबई में मम्मा आती थी तो मम्मा को भी देखते थे। इतनी मीठी वाणी, जैसे मीठी लोरी मम्मा देती, इतनी स्वीट आवाज़ तो मम्मा की हम सुनते थे। और इतना प्यार से मम्मा समझाती है, इतना प्यार दे रही है जो वो सगी माँ भी न दे, इतना मम्मा का प्यार मिलता था। तो सचमुच मम्मा बाबा को देखते तो सब भूल ही गए। लेकिन फिर बाबा जब छुट्टी देते थे तो बाबा को हम पत्र लिखते थे कि बाबा आप हमको याद करते हो, तो बाबा कहते हैं न विसरो न याद रहो न विसरो न याद रहो, भूलो भी नहीं और याद भी नहीं रहो। फिर न्यारे प्यारे हो गए, तो एक सेकंड पहले क्या हुआ वो भूल गए। तो यही तो है अशरीरी अवस्था, यही तो है जीते जी मरना। बाकी गला काट के नहीं देना है। तो जीते जी मरना बाबा हमको सिखाते हैं। पास्ट की बातें तो भूल ही जाओ, अपना पास्ट तो याद ही नहीं करना है, पर दूसरों का पास्ट भी याद नहीं करना है। इसीलिए जब बाबा कहते हैं ना शुभ भावना शुभ कामना, ये शुभ भावना शुभ कामना क्या चीज है? ये है शुभ भावना माना उनका जो संपूर्ण रूप है वो देखना। हर एक आत्मा का अपना संपूर्ण रूप तो है ना, वतन में संदेशियां देखती है हमारा संपूर्ण रूप, फरिश्ता रूप। तो ये शुभ भावना है कि ये बहुत ऊंची आत्मा है, ये बहुत महान आत्मा है। और शुभ कामना माना शुभ कामना रखना कि ऊंची हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी ये देख सोचेंगे तभी तो शुभ भावना भी होगी। और शुभ भावना है कि ऊंची आत्मा है तो फिर अंदर में शुभ कामना भी रहेगी कि ऊंची हो जाएगी, भले इस समय थोड़ी कमियां कमजोरियां हैं। तो इसीलिए भट्टी का नाम ही रखा महसूसता द्वारा संपन्नता। अपनी कमियों को कमजोरियों को खामियों को देखो, क्या क्या मेरे अंदर कमी कमजोरी है जिसको मुझे निकालना है। आगे तो देखना है, किसी को साइड में भी किसी को नहीं देखना है और साइड में भी किसी को नहीं देखना है, किसी की कमी कमजोरियां भी नहीं देखनी है। वर्णन तो क्या देखनी भी नहीं है, सोचनी भी नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना। जब एक्टर्स का ड्रामा चलता है ना, एक्टिंग करना है उनको स्टेज पर आकर के, तो हर एक को अपना अपना पार्ट याद करना होता है। अभी हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट याद कर रहा है, अब वो पार्ट जिसको बजाना है उसको बोलना है, तो हम अपना पार्ट याद करेंगे या उनका पार्ट हम याद करेंगे, या उनको देखेंगे वो पार्ट ठीक बजा रहा है या नहीं, ठीक बोल रहा है या नहीं, वो डायरेक्टर का काम है, एक्टर का काम वो नहीं है। एक्टर का काम क्या होता, अपना पार्ट देखना, मैं कैसे बोलूं, मुझे कैसे एक्टिंग करनी है। तो ये बेहद का ड्रामा भी तो ऐसे ही है ना, दूसरे को देखना, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसमें मेरा क्या लेना देना, जो करेगा वो पाएगा, वो तो हर एक को पता है, ज्ञान तो सबको है। बाकी मेरे अंदर वो शुभ भावना शुभ कामना है कि ये आत्मा तो महान है, ये आत्मा जरूर महान बनेगी, भगवान को पहचाना है। बाबा कैसे बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी कितना बाबा प्यार करते थे, भले दुनिया की बातों से वो अनभिज्ञ थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं था, कभी स्कूल में नहीं गई, लेकिन बाबा उनकी कितनी महिमा करते थे। हाँ कि बच्चे आप तो उन बड़े बड़े वीआईपी से भी महान हो, उनको दुनिया का ज्ञान है लेकिन भगवान कौन है ये पता नहीं है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं। आपने खुद को भी पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया, तो ज्यादा समझदार होशियार कौन निकले, वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बिल्कुल अनपढ़ माताएं, और बाबा उनके आगे वंदे मातरम करते थे। खास करके बाबा की साकार मूल्यों में आता है, वो ककोड़ की माताएं थी, ककोड़ की, गुड़गांव की, उस समय तो गांव ही था गुड़गांव, तो ककोड़ की माताएं कहाँ कहाँ की, ऐसे गांव की माताएं आती थी। लेकिन इतना बाबा से प्यार, इतना बाबा से प्यार, वो ब्रह्मा बाबा को देख करके तो ऐसे चिपक जाती थी, उनको जोर से पकड़ लेती थी। एक माता थी, मैंने उसको देखा था, वो बाबा से भी लंबी थी, बाबा तो 6 फीट थे, तो उनकी हाइट तो बाबा से भी लंबी थी, और इतनी स्ट्रांग थी, बूढ़ी थी पर स्ट्रांग बहुत थी। हाँ, ये जैसे हरियाणा के होते ना, इतने स्ट्रांग माताएं भी, तो वो और क्या करती थी, बाबा को ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाती थी, बाबा कहते थे बस बच्ची ऐसे थी इतना, और बाबा को नचाती थी, तो बाबा भी बच्ची का रखते थे, तो देखो दादियां भी रखती थी, तो इसलिए परंतु भगवान को पहचाना, साधारण वेश में भगवान को पहचाना। और अभी तो हमको समय इशारा कर रहा है कि दादियां भी वतन में इंतजार कर रही है, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि एडवांस पार्टी बाबा से पूछ रही है कि अभी हमारा काम हम कब शुरू करें। एडवांस पार्टी का क्या रोल है, अनेक आत्माओं को टचिंग देना वो तो है ही है, लेकिन सतयुग के देवताओं को जन्म भी उनको ही देना है ना, तो इसीलिए उनका भी ये पार्ट होना है, तो योग बल की संतान तो तब पैदा होगी, तो इसीलिए उनको अपना रोल बजाना है। श्री कृष्ण के माँ बाप कौन बनेंगे, ये कौन बनेंगे, तो ये सब कुछ तैयारी अभी हो रही है ना इन एडवांस पार्टी की आत्माओं द्वारा। फिर प्रकृति भी पूछ रही है हम कब अपना शुरू करें, अभी तो बस ट्रेलर ही चल रहे हैं, ट्रेलर ही चल रहे हैं ना अभी तो। देखो हम सचमुच देखा कि उस दिन जब यहाँ पर इतना तूफान, इतनी आंधी, इतना कुछ हुआ, इतना नुकसान हुआ, बात मत पूछो, एकदम नुकसान, जबरदस्त नुकसान हुआ, जोर से पेड़ गिरे हमारे मधुबन के, ये पांडव भवन में भी पीछे पेड़ गिरे, कितना कुछ नुकसान हुआ उस समय, ठा ठा होता रहा, बिजली तो गरज रही है, तो उस समय ऐसे लगा कि पता नहीं क्या होगा, जैसे अभी विनाश होगा, यहाँ तक कि महसूस हुआ। तो देखो अब 3 तत्वों ने तो काम किया, अगर 4 कहें तो भी गलत नहीं, क्योंकि चलो शुक्र करो आग नहीं लगी, लेकिन उसी समय का आग भी लगी थी, किसी कलकत्ता में आग लगी थी एयरपोर्ट पर, फिर उसी समय पंजाब और वो दिल्ली NCR और सब तरफ वहाँ भूकंप आया था, वहाँ कश्मीर तक गए, आप लोगों ने महसूस किया भूकंप, महसूस किया था कि नहीं, किया ना थोड़ा बहुत, तो फिर भी बच गए, वो 5 रेक्टर स्केल पर था, अगर कहीं और ज्यादा होता तो पता नहीं कितना नुकसान होता, तो यहाँ तो बिजली गरजी, बिजली चमकी, इतना आवाज, ये मानो तो 3 तत्वों ने तो काम किया। एक तो बाढ़ आ गई सब तरफ, पूरे राजस्थान में कभी सोचा भी नहीं था बाढ़, यहाँ बाढ़ आ गई कितनी जगह कि सब जो, और एक तरफ बाढ़ आई, पानी पूरा शहरों में भर गया, कभी नहीं भरने वाला, कभी इतनी बारिश नहीं होने वाली, पूरा सारा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पहले के, पहली बार ऐसा हुआ है, मानो एक तरफ जल जल, हाँ फिर दूसरी ओर आंधी तूफान, तो ये वायु, तो जल वायु अग्नि पृथ्वी, 4 तत्वों ने तो काम किया, बाकी हाँ आकाश भी, क्योंकि बारिश भी हुई, तो मानो 5ों ही तत्वों ने थोड़ा रिहर्सल दिखाया। आकाश से तो वर्षा हुई, बिजली चमकी, जोर से बादल गरजे, सब इतने लोग डर गए कि पता नहीं आकाश फटने वाला है, कहीं ऐसे न हो, तो आकाश ने भी काम किया, वायु ने भी अपना काम किया, जल ने भी अपना काम किया, अग्नि ने भी अपना काम किया, पृथ्वी ने भी अपना काम किया, तो ट्रेलर था वो ट्रेलर, पर सचमुच जब होगा तो क्या होगा, हाँ क्या होगा सोचो, क्या होगा, तो देखो बाबा कहते हैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में रिहर्सल दिखाते हैं, पर बाबा बच्चों को सावधान भी करते हैं। वो बाबा से पूछ रही है प्रकृति, बाबा हम कब अपना काम शुरू करें? तब तक थोड़ा बहुत दिखाती रहती है। जब जिस समय कराची में थे, यज्ञ कराची में था, तो उस समय 14 साल भट्ठी में थे। तो जब 14 साल भट्ठी में थे तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। ये संस्था तो कराची में ही थी 1937 से लेकर 1950 तक। तो 1939 से बस दो साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 तक विश्व युद्ध चला, 6 साल तक चला। और उस विश्व युद्ध में इतने लोग मारे गए, लाखों लोग इतने मारे गए और इतना पूरा परिवर्तन आ गया, पूरा नक्शा ही बदल गया। कम्युनिज्म आ गया यूरोप के अंदर, ईस्ट यूरोप के अंदर, और बहुत कुछ परिवर्तन आया। तो बाबा से कई बच्चे पूछते थे, क्योंकि सुनते तो थे ना ऐसा हुआ है, और बाबा के बच्चे तो बहुत सुरक्षित थे कराची के अंदर। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये क्या विनाश है? तो बाबा कहते थे, नहीं ये तो रिहर्सल है। तो भी लाखों लोग मारे गए थे, ऐसे नहीं कि 100,000 मारे गए थे। फिर उसके बाद भारत का ये बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो रक्त की नदियां बही, इतनी खून की नदियां बही जो बात मत पूछो। क्या नहीं हुआ उस समय, इतना इतिहास में तो कुछ वर्णन ही नहीं है जितना हुआ। कैसे भागे वहां से लोग, यहाँ के वहां, मतलब एकदम जैसे घमसान इतना मच गया, इतने लोग मारे गए, एक दो के कत्लेआम किया, सब सिर काटे गए, क्या नहीं हुआ, गोलियां चली, खून की नदियां बही। तो तब बाबा से पूछते थे, बाबा ये विनाश है? बाबा कहते, ये रिहर्सल है। तो एक तरफ हाँ वो विश्व युद्ध भी कब समाप्त हुआ, जब एटॉम बॉम्ब जापान पर गिराया और जापान ने सरेंडर किया अमेरिका को, तो अमेरिका और इंग्लैंड जीत गया और युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन वो एटॉम बॉम्ब का रिहर्सल था, पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया हिरोशिमा नागासाकी। तो एक तरफ एटॉमिक वॉर का रूप था और दूसरा भारत और पाकिस्तान में गृह युद्ध हो गया, और तीसरी ओर एक बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, क्वेटा बलूचिस्तान में है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। वो 1945 में वहाँ इतना बड़ा भूकंप आया था, पूरा का पूरा शहर धरती में चला गया, इतना था क्वेटा। क्वेटा जानते होंगे, वो बहुत बड़ी बात हो गई, पूरा का पूरा शहर भूकंप में धरती में चला गया। कितने लोग मारे गए, पूरे शहर के लोग, आप सोचो। तो अभी बाबा से पूछा, बाबा ये क्या? बाबा कहते, ये तो रिहर्सल है, अब बताओ। तो जो बाबा कहते हैं ना, अणुयुद्ध, ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं, इन तीनों से विनाश होना है, वो रूप तो उस रिहर्सल रूप में बच्चों ने देखा इन 14 सालों में। फिर देखो कैसे धीरे धीरे वृद्धि हुई, कुछ सोचा थोड़ी था कि ऐसी सेवाएं होगी देश विदेश में, कुछ भी नहीं सोचा था, बस बाबा के साथ है और बाबा के साथ वापस जाना है। परंतु वो सब नजारे देखे, तो अभी क्या करना है? अभी भी रिहर्सल ही होनी है या समाप्ति होनी है? क्या समझते हैं? समाप्ति तो होनी है ना, पर क्या हम तैयार हैं? तो जो जीते जी मर चुके हैं वो तो तैयार ही होंगे। जो समझते हम तैयार हैं, हाथ उठाओ, हम तो जीते जी मर गए। अच्छा, सभी नहीं उठा रही माताएं, पर पोतरे की शादी करानी है क्या? हाँ, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं क्या? समझते हैं है ना, वो का वो नाटक दिखाते ना, वो बूढ़ी माता कहे बस भगवान उठा लो उठा लो उठा लो। जब नारद जी आए उनके पास, भाई चलो स्वर्ग में एक सीट खाली है चलो, तो कहे नहीं मैं अब मेरा परपोता अभी उसकी शादी होने वाली है, तो मैं बहू का मुंह तो देखूं। लेकिन बाबा कहते हैं किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, पर सफल ही होगी वो उनकी जो प्रभु हवाले करे या प्रभु के कार्य में सफल करे। तो अपने तन को मन को धन को हम सफल जितना करेंगे उतना भाग्य बनेगा। जो बाबा कहते अंत में तो सब हाथ खाली जाएंगे और हम बच्चे भरतू हाथ जाएंगे। कैसे जाएंगे भरतू हाथ? श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करके हम साथ ले जाएंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ राजा ही मिल जाएगी। तो इसलिए इतना निश्चय हो उतना ही नशा चढ़े और फिर उतना ही अंदर में स्थाई जो स्थिरता जो बाबा कहते हैं वो हो, कि सब कुछ देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, उनसे परे रहो, तब कहेंगे सचमुच जीते जी मरना। ठीक है, तो यहाँ ये तीन दिन यही अनुभव करके जाना, बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर, बिल्कुल सब आपके मोबाइल स्विच ऑफ। आज सबसे आप बात करें यहाँ तो मोबाइल अभी चल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहे हैं आप लोगों ने देखा नहीं चल रहे, अभी कोई चल रहा है कोई नहीं, क्योंकि वोडाफोन और जियो ये तो सब कुछ नहीं चलता है यहाँ। तो इसीलिए अभी जो कुछ चले भी घर में बता दिया होगा ना कि अभी तीन दिन कोई भी फोन नहीं करे, ना आप करना ना वो करे, बिल्कुल ऐसी भट्ठी में आप रहना जैसे कि आप हुए मर गई सारी दुनिया। ठीक है, हाँ ठीक है, सभी ठीक है बोलो, हाँ ठीक है, हाँ चलो, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।